الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو پچھلے ہفتے جو ہماری آخری کلاس ہوئی تھی ان آیات کی تفسیر پر تو اس کے اندر ہم نے ایک ہی موضوع کے اوپر ساری کلاس ایک گھنٹے کی وہ نمٹا دی تھی اور وہ موضوع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جہاں دوستوں کا نظام بنایا ہے جہاں ہمدردوں کا اور خیر خواہوں کا نظام بنایا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دشمنوں کا نظام بھی بنایا ہے دشمنوں کا نظام بدخواہوں کا نظام ٹھیک ہے یعنی پورا ایک سسٹم ہے دوستوں کا بھی پورا ایک سسٹم ہے اور دشمنوں کا بھی پورا ایک سسٹم ہے دوستوں کے سسٹم کو نبیوں والا سسٹم کہتے ہیں نبیوں والا سسٹم ٹھیک ہے نا صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں والا سسٹم کیونکہ اس کے اندر نبی بھی ہوتے ہیں نبی کے صحابہ بھی ہوتے ہیں اور نبیوں کے شاگرد بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پورا ایک سسٹم ہے یہ صرف نبی نہیں ہے ٹھیک ہے علماء مشائخ یہ نبی تو نہیں ہوتے نا لیکن یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں نبیوں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک سسٹم ہے اسی طریقے سے دوسری طرف بھی پورا ایک سسٹم ہے دشمن والا سسٹم ہے نا اس کا سرغنہ کون ہے سردار کون ہے ابلیس ملعون اور اس کے ساتھ پوری ایک فوج ہے اس کے پیروکاروں کی اس کے مقتدیوں کی اس کے فالوورز کی پوری ایک فوج ہے انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے تو وہ ایک دشمنوں والا سسٹم ہے اب یہ دونوں سسٹم جو ہے دنیا کے اندر روز اول سے کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ہی جب انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس وقت سے یہ سسٹم چل رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ جنت سے نکالنے کی کوشش اس وقت سے شروع کر چکا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں سسٹم جو ہے نا یہ اس دنیا کا لازم اور ملزوم جز ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری کیا بات ہے کہ ہم نہ تو ہم جو ہے وہ دوستوں والے سسٹم کو پہچان رہے ہوتے ہیں دوستوں والے سسٹم کو اگر پہچان بھی لیتے ہیں اگر کہ بھئی ہاں یہ دوستوں والا سسٹم ہے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات سننی چاہیے ان کی کلاس لینی چاہیے ان کا بیان سننا چاہیے ٹھیک ہے لیکن دشمنوں والے سسٹم کو تو ہم بالکل ہی نہیں پہچانتے بالکل ہی ان سے غافل رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے جو انسان دشمن سے غافل ہو جائے تو پھر وہ اپنی حفاظت دشمن سے کیسے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو دشمنوں کے سسٹم سے ہمیں بار بار مطلع کیا ہے بار بار اس کی یاد دلائی ہے اپنے قرآن کے اندر اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر کی تو یہ ساری ڈسکشن پچھلے ہفتے کی کلاس کے اندر کی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں نا فلا تعجل علیہم تو آپ جلدی نہ کیجیے ان پر انما نعد لہم عدا ہم تو پوری کرتے ہیں اس کی گنتی تو انما نعد لہم عدا کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عذاب کے بارے میں جلدی نہ کریں، وہ تو انقریب ہونے ہی والا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو گنے چنے ایام اور جو مدت دنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے، اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے۔ تو کافر نہ ماننے والا جو ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کا عذاب ہی عذاب رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس کے اوپر عذاب آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب آئے لیکن کسی کو پتا نہ چلے، کسی کو نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک بھائی تھے، ابھی ہم سفر سے واپس پہنچے ہیں تو ایئرپورٹ سے وہ ہمیں لے کر آ رہے تھے، تو راستے میں بات چیت چل رہی تھی تو کہنے لگے کہ ویکسین جو لوگ لگوا رہے ہیں تو ویکسین لگوانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو بڑے سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی عورتوں کے جو سسٹم ہوتے ہیں ان سسٹمس کے اندر بہت ابنارمیلٹیز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے اپنے شوق سے لگوائی ہے، آگے بڑھ چڑھ کر کے لگوائی ہے نا، تو پھر وہ جب ابنارمیلٹیز ہو رہی ہیں، کچھ ان کے سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو، ٹھیک ہے نا، یعنی اوپنلی نہیں بتاتے، جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے۔ بہر ہے کوئی بیمار پڑے گا، کسی کو زیادہ ایشوز ہوں گے تو قریبی رشتے دار ہو، قریبی ملنے جلنے والے ہو، ان کو تو پتا چل جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو پھر بات پھیلتی ہے، ورنہ وہ نہیں بتاتے۔ تو جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے کہا یہی حال گناہوں کا بھی ہے کہ جب انسان کو گناہوں سے روکتے ہیں تو وہ بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اس کو گناہوں کے نقصانات کا بتایا جاتا ہے تو وہ بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اب گناہ کا تو لازمی اثر ہے، لازمی اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان فرما دیا، جو بھی گناہ کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا، یعنی جزا مراد سزا، سزا پائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، جو کفر کر رہا ہوتا ہے، شرک کر رہا ہوتا ہے، یا گناہ کر رہا ہوتا ہے، بغیر توبہ کیے ہوئے گناہ کرے چلا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں تو تکالیف اور پریشانیاں اور مختلف قسم کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، بلکہ کیا کہتا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ہے نا، آئی ایم ویری فائن، ہے نا، میری زندگی تو بڑی مزے کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں نہیں بتاتا؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایڈمٹ کر لے گا نا اپنی پریشانیوں کے بارے میں کسی نیک صالح انسان کے سامنے، تو وہ نیک صالح انسان اس کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ بھائی آپ کیوں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گناہوں کے اثرات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جی اس کی زندگی تو بڑے مزے میں گزر رہی ہے، بڑے مزے کی زندگی گزر رہی ہے، حالانکہ اس کی زندگی کرب اور اذیت کا مجموعہ ہوتی ہے نا، ایک سے ایک تکلیفیں، پریشانیاں، اور کچھ اور کچھ نہیں تو جنی چڑھ جاتے ہیں ان کے اوپر، ہے نا، جنی ان کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اب جو ہے وہ جادو ہو رہا ہے، جن ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کی خرافات جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کی زندگی مستقل چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو یعنی ایک شکل ہے، بہت ساری دوسری شکلیں ہوتی ہیں تکالیف کی، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی سزائیں جو ہیں وہ ایک شکل کی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کی بہت مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈپریشن انگزائٹی یہ صرف ایک شکل ہے، ہر ایک کو ڈپریشن انگزائٹی نہیں ہوتی، کسی کو کسی شکل میں تکلیف اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی اور شکل میں سزا دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ چھپا رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کو عذاب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کافروں کا بھی، کہ کافروں کی زندگی بھی خوشی والی زندگی نہیں ہوتی، جیسے امریکہ میں، یورپ میں، ہے نا، ہمیں لگتا ہے بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، ہم پاکستان میں انڈیا میں بیٹھ کر کے نا دور کے ڈھول سہانے سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی ہے نا عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں کتنا کرب، کتنی اذیت، یعنی اللہ کا عذاب تو ان کو اس دنیا کی زندگی میں ہی ملنا شروع ہو گیا ہے، مل رہا ہے، ہمیں دور بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، या हमारा तो ये हाल है कि हम वहां पहुंच भी जाते हैं ना तो भी हमें नजर नहीं आता उनका अजाब, क्योंकि हम जो है वो खाली ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल है ना, ऊपर ऊपर की चीजें देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं वाकई इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, है ना। क्योंकि जब पाकिस्तानी इंडियन जाते हैं ना अमेरिका में तो वो तो जाते हैं खूब पैसा बनाने के लिए, है ना, तो इस वजह से वो पैसा बनाते हैं, खूब पैसे बनाते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी जगहों में रहते हैं, बड़ी साफ सुथरी जगहों में जहां पर जो है ना वो हर चीज ठीक ठीक काम कर रही होती है। तो इस वजह से वो समझते हैं कि ये तो हम तो जन्नत में आ गए, हम तो जन्नत में आ गए, है ना, दुनिया की जिंदगी में हमें जन्नत मिल गई। ठीक है, तो उनको तो नहीं पता ना कि ये लोग गोरे आपको नजर आ रहे हैं उनके घरों में क्या चल रहा है, राइट, उनका सिस्टम किस तरीके से जो है वो टूट फूट करके खत्म हो चुका है, राइट। हमें तो उनको तो नजर नहीं आता जो यानी अपने घरों के अंदर, वहां पे तो मिलना जुलना तो वैसे भी नहीं होता। तो गोरों की लाइफ के अंदर जाके देखे ना तब पता चलेगा कि उनकी जिंदगी कितनी बुरी और कितनी यानी आप उनको उसको बयान भी नहीं कर सकते, कितनी गंदी जिंदगी उनकी होती है। और फिर कालों का इलाका, तो अमेरिका के अंदर जो काले रहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन जिनको कहते हैं, उनके इलाकों में तो पाकिस्तानी इंडियन लोग फटकते भी नहीं है उनके उन इलाकों के करीब, करीब भी नहीं जाते उन इलाकों के, है ना। उन इलाकों में जाएं तो पता चलेगा कि वहां पर तो जैसे जंग नहीं होती, जंग वो तो वॉर जोन होते हैं जहां पर काले रहते हैं अमेरिका के अंदर, हर जगह टूटी फूटी जली, घर जले हुए, घर टूटे हुए, और एक दहशत का आलम होता है वहां पर। वहां पर उन्होंने जो घर होते हैं ना, घरों के ऊपर उन्होंने वो लोहे की सलाखें ठोकी हुई होती हैं और बार्ड वायर्स लगाई हुई होती हैं और जो है वो ऐसी जो है वो नेट्स लगाए हुए होते हैं कि कोई शीशा तोड़ करके अंदर ना घुसाए, है ना, क्योंकि इतना इतना आसान है वहां पर किसी को कत्ल कर देना, किसी को जो है वो लूट लेना, किसी की मार देना बहुत आसान है, राइट। तो जो गोरों के इलाके हैं वहां घरों के अंदर अजियत मौजूद है, और जो कालों के इलाके हैं वो तो बाहर से भी अजियत नजर आती है। लेकिन हमारे जो जाते हैं वहां पर बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं जाकर के और बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, उनको कहां से नजर आएंगी ये सारी चीजें। तो वही समझ रहे होते हैं कि जी ये तो जन्नत है, जन्नत नहीं होती। मैं ये अमल सू युजा भी, जो भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसको जजा मिले, उसको सजा मिलेगी। तो ये काफिर को सजा कैसे नहीं मिलेगी, ये कैसे हो सकता है कि इंडियन पाकिस्तानी को तो सजा मिल रही है, है ना, कभी कोई तकलीफ कभी तो कोई तकलीफ, और जो गोरे साहब अमरीका में बैठे हुए उनको सजा नहीं मिल रही। अल्लाह का निज़ाम वहां बदल जाता है, अल्लाह का निज़ाम कोई नहीं बदलता, वहां पर भी सजा मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन मुसलमान को सजा इस दुनिया की जिंदगी में मिल रही होती है, अगर वो ईमान की हालत में मरता है तो उसके बाद अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमाएंगे, ईमान की वजह से शफात मिलेगी उसको नबी अलैहिस्सलाम की और औलिया कराम की शफात मिलेगी, ठीक है। लेकिन दुनिया की जिंदगी में जलील और रुस्वा होकर के रहेगा, ठीक है, दूसरों के हाथों पिटता रहेगा, जलील होता रहेगा, ये मुसलमान के साथ अल्लाह ताला का उसूल है। अपना बच्चा है ना, जिस तरह कहते हैं ना अपने बच्चे को खुद तरबियत करता है बंदा, उसी तरह जो मानने वाले होते हैं वो अपने बंदे होते हैं, तो उनके साथ तो फौरन इधर गुनाह किया इधर मार पड़ी, इधर जो है वो यानी खुल करके जलील करते हैं जिस तरह, है ना। अब तो आजकल तो वो होता नहीं है ना कि जी बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी तो अम्मा जो है वो जरा ठुकाई करें, आजकल तो ये होता नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसे ही होता था, अपना बच्चा जब करता था ना तो दूसरे के बच्चे को तो कोई ठुकाई नहीं करता था, अपने बच्चे को ठुकाई करते थे, है ना, तुमने कैसे किया ये काम कैसे कर दिया, ठीक है। यही मामला अल्लाह ताला के भी है कि मुसलमान जो होता है वो अपना बंदा है, मानने वाला है, तो इसकी इधर ही ठुकाई कर लो, ठीक है। जबकि काफिर जो होता है ये अपना नहीं होता, ये तो बिल्कुल शैतान का बंदा बना हुआ होता है, तो इस वजह से काफिर की ठुकाई जो होती है ना वो सबके सामने नहीं हो रही होती, उसकी ठुकाई जो होती है वो ऐसे चोरी छुपे तरीके से ऐसे बंद कमरों में हो रही होती है जो हमें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। लेकिन मरने के बाद उसकी हमेशा हमेशा की फिर ठुकाई है। तो ये एक बुनियादी उसूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये उसूल भी भूल जाते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक्स है, ये तो है ना किंडरगार्टन लेवल की ये तो बातें है ना, लेकिन हमें ये भी याद नहीं रहती। बहरहाल तो यहाँ पर वही उसूल है कि जी हमने उनको गिने चुने अय्याम और जो मुद्दत दुनिया में रहने की दी है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, इसके बाद अजाब ही अजाब है। नउद्दु लहुम यानी हम उनके लिए शुमार करते हैं, इसका तर्जुमा बनता है हम उनके लिए शुमार करते हैं, मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि उनकी कोई चीज आजाद नहीं, उनकी उम्र के दिन रात गिने हुए हैं, उनके सांस, उनकी नकलो हरकत का एक एक कदम, उनकी लज्जात, उनकी जिंदगी का एक एक लहजा हम गिन रहे हैं। ये गिनती पूरी होते ही उन पर अजाब टूट पड़ेगा। ठीक है, इधर आंख बंद हुई, उधर जो है ना वो जहन्नम वाला अजाब शुरू, क्योंकि कब्र जो होती है उसके अंदर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए। गिना हुआ तो ईमान वाले क्या की जिंदगी भी गिनी हुई है। ये कोई थोड़ी है कि ईमान वाला जो है वो मुसलमान वो अनलिमिटेड लाइफ लेकर के आया होता है। तो यहां पर उनकी जिंदगी के बारे में गिना हुआ क्यों कहा गया? क्योंकि जब किसी की किल्लत बयान करनी होती है ना, तो ये एक बात करने का अंदाज है कि बस चंद दिन की बात है, बस थोड़ी सी बात है, बस अभी ये गुजर जाएंगे दिन। ठीक है, तो खराबी बयान करने के लिए, मुश्किल हालत को बयान करने के लिए गिनने का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे रमजान मुबारक के अंदर मुश्किल पड़ती है, ठीक है, मुश्किल होती है इंसानों के लिए, तो रमजान मुबारक के दिनों को भी क्या कि भाई ये तो चंद गिनती के दिन है, अय्याम मादूदात, गिने चुने हुए दिन है, बस इन गिने चुने हुए दिनों में तुम अल्लाह ताला को थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करके राजी कर लो, फिर तुम्हारे मजे ही मजे। ठीक है, वरना साल के बाकी जो बार 11 महीने होते हैं क्या वो अनकाउंटेड होते हैं? बाकी 11 महीने हैं वो भी तो काउंटेड ही होते हैं, उसी तरह रमजान मुबारक के दिन भी काउंटेड ही होते हैं, लेकिन किल्लत को बयान करने के लिए जो है ना वो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, गिने चुने। उसी तरह अरबी के अंदर भी नउद्दू लहुम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि उनके इनकी जिंदगी ये नहीं है कि जी ये हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी करते रहेंगे, हमेशा आपके ऊपर जुल्म करते रहेंगे, बल्कि थोड़ी दिन की हमने इनको छूट दी हुई है, मोहलत दी हुई है, ये मोहलत उनकी खत्म होने वाली है, आप फिक्र ना करें। हारून रशीद ने, जो हारून रशीद का एक बेटा था, फिर बाद में उसको हुकूमत मिली तो फिर बड़ी उसने शानदार किस्म की बादशाहत करी, तो मामून रशीद ने एक मरतबा सूरह मरियम पढ़ी। जब इस आयत पर पहुंचे तो हाजरीन मजलिस जो उलमा फुकहा थे उस जमाने में, जो बादशाह भी होते थे ना वो उलमा फुकहा की इज्जत करते थे, है ना, अपने दरबार के अंदर उनको जगह दिया करते थे। और आज जो बिल्कुल चूड़े किस्म के लोग होते हैं, चूड़ा या बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं ना, जिनको कुछ भी नहीं आता, राइट, किसी काम के नहीं होते, वो भी उलमा की नाकदरी करते हैं, बल्कि उलमा के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, है ना, नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने उलमाए कराम के लिए। ठीक है ना, उस जमाने में मुसलमानों ने जो शान और शौकत के साथ दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करी है उसकी रीजंस थी ना, राइट, कि वो दीन की कदर किया करते थे, वो दीन वालों की कदर किया करते थे, बेशक गुनाह भी करते थे लेकिन साथ साथ दीनी निजाम को भी अपने मुल्कों के अंदर चलाते थे, दोनों काम। ये जो आजकल हमारी बच्चों की क्लास जो चल रही है, सीरत क्लास जो है, तो उस सीरत क्लास में एक नया सिलसिला भी शुरू किया है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमारे एक भाई हैं जो कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो बड़ी बड़ी शख्सियात दूसरी गुजरी हैं सहाबा कराम के बाद, तो उनको एक एक करके बच्चों के सामने बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो पिछले दौर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में उन्होंने शायद 3 क्लासेस करी, तो उसमें फिर ये बात बहुत ज्यादा आई कि बनु उमैया जो बनु अब्बास से पहले जो खानदान था, बनु उमैया का खानदान, उसने मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करी, है ना, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो बनु उमैया के थे। ठीक है, तो उनके इंतकाल के बाद फिर उनका बेटा यजीद बना, और फिर उनके बाद जो है उसके बाद जो है वो दूसरे लोग बने, मरवान बिन अब्दुल मलिक, तो अब्दुल मलिक बिन मरवान, सारे के सारे, है ना। तो अब्दुल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उनमें से एक थे जो कि इंतहाई मुत्तकी थे, लेकिन बाकी जो थे वो बड़े जरा जालिम किस्म के लोग थे। ठीक है, लेकिन जालिम होने के बावजूद उनके दौर हुकूमत के अंदर आम आदमी को इंसाफ मिलता था और मुल्की फैसले जो है वो शरीयत के मुताबिक होते थे। ठीक है, तो उनका जो जुल्म और उनकी जो 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 करप्शन थी ना, वो करप्शन और जुल्म जो था वो उस जमाने के एतबार से देखा जाए तो बहुत ज्यादा था। क्योंकि वो जमाना जो था वो बिल्कुल सहाबा कराम के बाद वाला जमाना था, ठीक है। तो वो जो था ना बिल्कुल सफेद, जैसे आप एक बिल्कुल सफेद कपड़ा पहने, सफेद कपड़ा, शफाफ कपड़ा पहने, तो उस सफेद साफ और शफाफ कपड़े के ऊपर अगर थोड़ी सी भी कालिक लग जाए तो कितनी खुल करके नजर आएगी, है ना, खुल करके कालिक नजर आएगी। बनु उमैया के जो बादशाहों का जुल्म और बादशाहों का जो जो जो, जो बुराइयां मशहूर है ना, वो इस वजह से नहीं कि वो आज के जैसे लोग जो आजकल के हुक्मरान हैं या पिछले 200 साल में जिस किस्म के हुक्मरान आए हैं वो उस किस्म के हुक्मरान थे, नहीं, वो ऐसे नहीं थे, बल्कि वो ऐसे थे कि जैसे कि साफ शफाफ कपड़े के ऊपर अगर थोड़ा सा भी कालिक लग जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी नजर आती है ना। उनका ये मामला था कि चूंकि वो सहाबा कराम के बिल्कुल बाद वाला जमाना था, ताबईन और तबा ताबईन वाला जमाना था, तो इस वजह से उस जमाने में वो लोग थोड़ा सा भी कोई खराब करते थे ना, उस जमाने के हिसाब से वो बहुत बड़ा गुनाह था उस जमाने के हिसाब से, ठीक है। इस वजह से उनकी बुराइयां जो है वो तारीख की किताबों के अंदर आपको मिलती हैं। लेकिन आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल जिसको कुछ कहते हैं वो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है ना, आजकल को तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। तो मामून रशीद जो था वो भी तबा ताबईन के जमाना ही तकरीबन बनेगा वो, क्योंकि बनु उमैया की हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चली, वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद बनु अब्बास की हुकूमत आ गई और बनु अब्बास के अंदर फिर हारून रशीद जो था वो बहुत बड़ा और नेक बादशाह भी मशहूर है, वो हारून रशीद के बड़े किस्से आपने सुने होंगे, उनका बेटा जो था ये मामून रशीद था। तो इसने जो है वो यानी इसके दरबार के अंदर उलमा फुकहा मौजूद हुआ करते थे, ठीक है। तो इसने जो है उनमें से इब्ने सम्माक की तरफ इशारा किया कि इसके मुतालिक कुछ फरमाइए आप, इस आयत के मुतालिक। तो उन्होंने अर्ज किया कि जब हमारे सांस गिने हुए हैं उन पर ज्यादती नहीं हो सकती तो ये किस कदर जल्द खत्म हो जाएंगे। गिनी चुनी चीज तो बिलाखिर खत्म ही हो जानी है ना। तो हमारे सांस यानी सिर्फ काफिरों के सांस गिने हुए नहीं है बल्कि इंसानियत के सांस गिने हुए हैं, ठीक है। जो भी आता है इस दुनिया में तो वो अपनी मियाद ले करके आता है, ये नहीं कि यहाँ आने के बाद डिसाइड होगा कि जी उसने 40 साल जिंदा रहना है कि उसने 60 साल जिंदा रहना है, नहीं, ये पहले से डिसाइडेड है, ये तकदीर में लिखा हुआ है कि कितने दिन यहाँ पर रहना है। इसी को बाद शौरा ने कहा है, हयातु का अनफासुन तरुद्दु फकल्लमा मदा नफसुम मिनका मिनकन तकसत बिही जुजअन, कि तेरी जिंदगी के सांस गिने हुए हैं, जब एक सांस गुजरता है तो तेरी जिंदगी का एक जुज कम हो जाता है, है ना। जैसे हम कहते हैं ना जी एक दिन कम हो गया तो बर्थडे क्यों मना रहे हो, है ना, बर्थडे के ऊपर सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो कि यहाँ जी बड़ा मैं इस दिन पैदा हुआ था, आज मैं 40 साल का हो गया, आज मैं 25 साल का हो गया। भाई तुम्हारी जिंदगी के 25 साल खत्म हो गए और तुम अपनी मौत के जो है वो और करीब हो गए, तो इसके ऊपर खुशी मनाने वाली कौन सी बात है भाई, है ना, कि केक काट रहे हैं तो उसके बाद सारी हरकतें कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि इंसान दिन रात में 24,000 सांस लेता है, ठीक है, 24,000 ले, या किसी को ऑक्सीजन का मसला है तो उसकी सांसें जो है वो जरा कम आ रही हैं, किसी को जरा ज्यादा आ रही हैं, तो 24,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी हैं काउंटेड हैं। बास हजरत ने फरमाया वो कैफ यफरहु बिदुनिया वलज्जतिहा फता युअद्दु अलैहि लफ्जा वन्नफसा, कि यानी दुनिया और इसकी लज्जत पर वो शख्स कैसे मगन और बेफिक्र हो सकता है जिसके अल्फाज और सांस गिने जा रहे हों। तो ये दुनिया की जिंदगी की हकीकतें हैं ना, तो ये तो हम सब के ऊपर है अप्लाई, यानी कहने वाले के लिए भी, लिखने वाले के लिए भी और सुनने वालों के लिए, हर एक के लिए ये चीज कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स है, किसी के लिए चेंज नहीं होते। आपके भी जिंदगी के साथ ऐसे ही गिने हुए हैं जैसे कि साजिश की जिंदगी के साथ गिने हुए हैं, और हमें मजे की बात यह कि ना आपको पता है कि अब कितने रह गए हैं और ना मुझे पता है कि अब कितने रह गए हैं, और ना जो लिख रहे हैं हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, है ना, कितनी दुनिया को फायदा पहुंचाने वाले, है ना, कि भाई दिल ऐसा लगता है कि जैसे इतने फायदा मंद लोग तो अल्लाह ताला दुनिया से हटाएंगे ही नहीं, दुनिया ही में रहेंगे है? लेकिन इतना फायदा पहुंचाने वाले लोग जिनकी जात से कितने हजारों लाखों लोग फायदा उठा रहे थे, अल्लाह ताला ने जब इनके सांस खत्म हो गए अल्लाह ताला ने इनको भी कब्र में पहुंचा दिया, है ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम, है ना, औलिया कराम सारे के सारे कब्रों में पहुंच गए। तो हम और आप जो है वो कौन सा यहाँ पे रहने वाले हैं हमेशा हमेशा, ठीक है। तो ये बातें जरा अपने आप को रिमाइंड कराते रहे इंसान ना, तो फिर उसकी प्रायोरिटीज तरजीहात सही रहती हैं। और जब इंसान अपनी मौत को भूल जाता है और इस बात को कि बस मुझे पता भी नहीं कि मैं कब इस दुनिया से खत्म हो जाऊंगा, तो फिर उसकी तरजीहात जो होती है ना वो मैसअप हो जाती है। फिर वो ऐसी चीजों के ऊपर सोचना, फिक्र करना और हर वक्त उसके बारे में परेशान रहना कि जिन चीजों ने उसको मरने के बाद की हमेशा हमेशा वाली जिंदगी में कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा, वो उनके बारे में परेशान भी हो रहा है, घरों के अंदर झगड़े लड़ाइयाँ, कभी कोई मुंह बसोर के बैठा हुआ है, कभी दूसरा कोई मुंह बसोर के बैठा हुआ है, कभी किसी ने बातचीत बंद कर दी, कभी किसी ने जो है वो आना जाना बंद कर दिया, कभी किसी ने जो है वो दूसरे के साथ जो है वो गड़े बाजी बना करके, है ना, कि खानदान के दूसरे लोगों के खिलाफ जो है वो मुहाजराई शुरू कर दी, है ना। ये सारे तमाशे हमारे घरों में होते हैं ना हर वक्त, है ना, हम तो देखते रहते हैं, पहले भी देखते थे, अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे घरों के अंदर जारी है। जो दीन की तरफ आ गए ना और इस्लाह वाली जिंदगी जिन्होंने इख्तियार करनी ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जिंदगियों से ये तमाशे खत्म हो गए। वरना हमने तो अपने बचपन में ये तमाशे हर यानी हर वक्त ही होते हुए देखे, और आज भी उन घरों में देख रहे हैं कि जिन घरों के अंदर जो है वो या तो दीन है ही नहीं, या अगर है भी तो बिल्कुल बस जो है ना वो मन मर्जी वाला दीन है। जाहिरी तौर पर बस वो कुछ काम कर लेते हैं दीन के या अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा दीन की कोई अमल दखल नहीं है उनकी जिंदगी के मामलों के अंदर। तो वहां पे भी इस किस्म के तमाशे चलते रहते हैं हर वक्त लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो भाई दीन तो असल वो है कि जिसके अंदर इंसान को आखिरत की फिक्र लग जाए, उसकी तरजीह नंबर वन, प्रायोरिटी नंबर वन आखिरत बन जाए, ये है दीन, है ना। वो कौन सा दीन है कि जिसके अंदर आखिरत जो है वो तो याद ही नहीं आती, है ना, बस जो है वो इधर टकरे मार लो, उधर जो है वो ये वाला काम कर लो, उधर जो है वो फलाना वाला वजीफा पढ़ लो, उधर जो है वो फलाने वाला ये कर लो, है ना, ये दीन ये कौन सा दीन है भाई, है ना। ये तो शैतान ने एक हमारा दीन बना दिया है जिसकी कोई हमें फायदा नहीं होता जिस दीन का ना। आखरत और मौत, इसके बगैर तो दीन का कोई तसव्वुर ही कोई नहीं। दुनिया की लज्जत पर वो शख्स कैसे मगन और बेफिक्र हो सकता है कि जिसके अल्फाज और सांस गिने जा रहे हों। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ्दा, कयामत के दिन का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं अल्लाह ताला कि जिस दिन नहशुरुल मुत्तकीन हम जमा करेंगे मुत्तकीन को रहमान की तरफ, वफ्दन, लफ्ज वफद ऐसे आने वालों के लिए बोला जाता है जो किसी बड़े बादशाह या अमीर के पास इकराम व एजाज के साथ जाए। वफ्त जाते हैं ना जी, वफ्त मिलने के लिए, वजीर आजम साहब के पास वफ्त मिलने के लिए आया, तो कभी चपरासियों का वफ्त जो है वो अपना जॉब, जी मैं हमने कहाँ पे सफाई करनी है, आज हमने महल के किस कमरे में सफाई करनी है, तो वो जो भंगी लोग होते हैं वो वफ्त बना करके नहीं जाते, है ना जी, पूछने के लिए कि जी आज हमें किधर सफाई करनी है। वफ्त बना करके तो डिग्निटरीज आते हैं ना, डिप्लोमैट्स आते हैं ना, राइट, इंपॉर्टेंट लोग आते हैं ना वफ्त बना करके। तो ये फरमाते हैं कि किसी बड़े बादशाह या अमीर के पास इकराम व एजाज के साथ जाए, तो ये कौन होंगे, मुत्तकी। और मुत्तकी कौन होता है, गुनाहों से बचने वाला, आखरत के अजाब से डर करके जो गुनाहों से बचता है वो मुत्तकी होता है, और दुनिया में रुसवाई से डर करके जो गुनाहों से बचता है वो मुत्तकी नहीं होता, है ना, कि जी मैं फलानी जो जुआ खाना है तो उस जुआ खाने में जाते हुए अगर पकड़ा गया तो बड़ी रुसवाई होगी, है ना, या अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे वाकयात भी पता चलते रहते हैं कि जी बुरका पहन करके बाहर निकली, है ना, बुरका निकाब के साथ बाहर निकली, क्यों भाई, कि पता ना चले कौन किधर जा रही है, है ना। तो ये निकाब जो किया है ये अल्लाह के हुक्म पर्दे की वजह से नकाब नहीं किया, बल्कि ये रुसवाई से या पिटाई से बचने के लिए नकाब किया। تو یہ نقاب جو ہے نا اس کا تقویٰ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ ایک عورت جو کہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے جو پردہ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی نقاب پہن کر کے باہر جا رہی ہے نا, اور یہ لڑکی بھی نقاب پہن کے باہر جا رہی ہے, لیکن وہ متقی ہے یہ متقی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہری شکل دونوں کی ایک ہی ہے نا, لباس دونوں کا ایک ہی ہے نا, عمل دونوں کا ایک ہی ہے نا, لیکن نیت سے کتنا زیادہ فرق. اس کا یہ عمل جو ہے یہ عذاب کا سبب بنے گا, اور اس کا جو کہ اللہ کی حکم کی وجہ سے کام کر رہی ہے اس کا یہ عمل اس کے لیے ثواب کا اور کامیابی کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے, تو متقیوں کے لیے یہ والی بات ہے. یہ دنیا کی رسوائی یا دنیا کے کسی نقصان سے بچنے کے لیے اگر جو ہے وہ گناہ نہ کیا تو یہ انسان متقی نہیں ہوتا. بعض روایات حدیث میں ہے کہ یہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کے پہنچیں گے, اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لیے پسند کرتا تھا. یعنی اس وقت جنت میں داخل تو نہیں ہو رہے نا, ابھی تو جا رہے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے, تو ابھی جنت والی سواریاں تو جنت کے اندر جا کر کے ملیں گی, لیکن ابھی کون سی سواریاں مل رہی ہیں جن کو یہ دنیا میں پسند کیا کرتا تھا. اب ظاہر ہے ہم سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ گھوڑے کو پسند کرتے ہیں یا اونٹ کو پسند کرتے ہیں, تو ہم تو گھوڑے اونٹ, ہمیں تو بیٹھنا ہی نہیں آتا, چلانا ہی نہیں آتا گھوڑا اونٹ, ہے نا. تو اس وجہ سے ہم نے تو پھر جو اپنی بی ایم ڈبلیو یا کوئی مرسیڈیز جس کو دیکھ کر کے دنیا میں ہے نا دل میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا کہ بھائی کاش میرے پاس بھی ہوتی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے اوپر میں شکر ادا کروں گا, رائٹ, اور اسی کے اندر جو ہے وہ میں صبر کروں گا اور نیکی کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا, مجھے یہ بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ قیامت کے دن مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بی ایم ڈبلیو دے دیں گے, ہے نا. کسی کو مرسیڈیز مل جائے گی, کسی کو رولز رائس مل جائے گی, کسی کو ایک سے ایک پتہ نہیں نام بھی ایسے مشکل ہوں گے تو نام بھی یاد نہیں رہتے. ٹھیک ہے, تو پسند کی سواریاں ملیں گی. ابھی جنت میں جانے کے لیے, جنت کے اندر بی ایم ڈبلیو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جنت کے اندر جا کر کے تو بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ تو پھر جس طرح نجاست ہوتی ہے نا باتھ روم کی, وہ بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز اور یہ سب تو باتھ روم کی نجاست سے بھی زیادہ غلیظ لگیں گی جنت کے اندر جانے کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن جنت سے پہلے اونٹ گھوڑا یا دوسری سواریاں, رائٹ. بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے اعمال صالحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے. جیسے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ جو انسان کے اعمال ہوں گے نا وہ اعمال باقاعدہ قیامت کے دن فزیکل فارم اختیار کر لیں گے. اس دنیا کے اندر اعمال کا کوئی مادی حقیقت نہیں ہے, کوئی مادی شکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک عمل ہوتا ہے جو کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے نامہ اعمال کے اندر لکھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اس کی یعنی یہ جوہر نہیں ہے, کوئی ذرا ٹیکنیکل جو زبان ہوتی ہے تفسیر وغیرہ کے اندر استعمال, وہاں پہ جوہر کہتے ہیں اس کو, ایٹومک فارم, کوئی ایٹومک میٹیریل فارم نہیں ہے اعمال کی. لیکن قیامت کے دن یہی اعمال میٹیریل فارم میٹر بن جائیں گے, اور میٹر کا اس کو میٹر کو جوہری فارم کہتے کیوں ہیں, کیونکہ جوہر مینس ایٹم. ٹھیک ہے, اور میٹر کا جو یونٹ ہے وہ ایٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایٹومک فارم مٹیریل فارم اختیار کر جائیں گے. ٹھیک ہے, جو گناہ کے اعمال ہیں وہ جو فارم اختیار کریں گے وہ فارم ہوگی اذیتناک فارم. ٹھیک ہے, گناہ اذیتناک مٹیریل فارم میں تبدیل ہو جائیں گے, جیسے سانپ, بچھو, آگ, رائٹ, گرم پانی, اس طرح کی چیزیں. صحیح ہے, اور جو ثواب کے اعمال ہوں گے وہ فرحت بخش, خوشی پہنچانے والی مٹیریل فارم اختیار کر لیں گے, جیسے کہ سواریاں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو جو ہے وہ پیدل نہ چلنا پڑے, آپ کے جو ہے وہ عزت کے ساتھ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ رہے ہوں, تو وہ سواریوں کی شکل اختیار کر لیں گے. تو یہی بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے. یہ روایات حدیث روح المعانی اور قرطبی نے نقل کی ہے. कोई सवाल वगैरह नहीं? आगे चले, आगे फरमाया था कि वनसूक المجرمین الی جہنم وردا, और हम हाँक कर ले जाएंगे जुर्म करने वालों को जहन्नम की तरफ प्यासा. तो उसमें से इला जहन्नम विरदा के अंदर जो विर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो फरमाते हैं कि विर्द के लफ्जी मानी पानी की तरफ ले जाने, पानी की तरफ जाने के हैं. ठीक है, और जाहिर यह है कि प्यास ही के वक्त कोई आदमी या जानवर पानी पर जाता है. ठीक है, प्यास ना लगे तो आप खामखा पानी नहीं पी रहे होते, है ना, टेस्ट एंजॉय करने के लिए आप पानी नहीं पीते. आप प्यास की, चाहे ज्यादा प्यास हो तो ज्यादा पानी पी लेते हैं, कम प्यास हो तो कम पानी पी लेते हैं, लेकिन बगैर प्यास के पानी नहीं पीते. तो इसलिए लफ्ज विर्द जो कि पानी तरफ की तरफ जाना का मानी रखता है, उसको प्यास के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, या यहां पर प्यास के लिए अल्लाह ताला ने उसको इस्तेमाल किया. तो फरमाते हैं कि इसलिए विर्दन का तर्जुमा प्यासा किया गया, यानी उनको ये नहीं कि जहन्नुम के अंदर कोई पानी होगा तो उनको पानी की तरफ ले जाया जा रहा होगा, नहीं, बल्कि यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये बताने के लिए कि ये लोग प्यास की शिद्दत में मुब्तला होंगे, और इस हालत में उनको पानी पेश करने के बजाय उनको जहन्नुम की तरफ हांका जा रहा होगा. किनको? मुजरिमीन को. अजीब यहां पर लफ्ज काफिरीन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि काफिरीन का लफ्ज हम सुन करके समझते हैं वो तो दूसरे लोग हैं, वो तो कोई और लोग हैं, है ना, हम भी थोड़ी हैं काफिरीन, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई हम काफिरीन नहीं है. ठीक है, लेकिन मुजरिमीन का जो लफ्ज है ये बहुत ब्रॉड मीनिंग रखता है ना, जुर्म करने वाला, गुनाह करने वाला, उसके लिए मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है. तो भाई सिर्फ शिर्क और कुफर तो गुनाह नहीं है ना, बल्कि झूठ भी तो गुनाह है ना, लोगों को तकलीफ देना, दुख पहुंचाना जानबूझ करके, है ना, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना, नमाज को छोड़ना, ठीक है, पर्दे को छोड़ना. ख्वातीन की क्लास है और ख्वातीन के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा फर्ज किया. ठीक है, तो बेगैरती मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि मर्द को अल्लाह ताला ने गैरत की सिफत अता फरमाई, फितरत अता फरमाई. अब वो इस फितरत के खिलाफ जाता है तो बहुत बड़े गुनाह का मर्तकब हो रहा होता है. द यूज़ के लफ्ज़ से उसको उसको फिर बयान किया जाता है कि ये शख्स जो है द यूज़ हो चुका है, बेगैरत हो चुका है. कितना बड़ा गुनाह है मर्द के लिए ये, जिस तरह औरत के लिए बेपर्दगी बेहयाई बहुत बड़ा गुनाह है, उसी तरह उसके लिए. तो ये सारे के सारे जुर्म है ना. तो नसूकुल मुजरिमीन ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जुर्म करने वालों को हम हाँक करके लेके जाएंगे जहन्नम की तरफ विरदन, प्यास की हालत में. तो हमें तौबा कर लेनी चाहिए. जो भी गुनाह कर रहे हैं, कर चुके हैं, बड़ा आसान है कि जी उनसे तौबा कर लें, अल्लाह ताला सब मुआफ कर देंगे. ठीक है, आसान सा काम है इस दुनिया की जिंदगी में, हमें कर लेना चाहिए. उस दिन के लिए रिस्क क्यों लेते हैं? क्या पता ऐसा हाल हो जाए कि जी शफात भी हमारे काम ना आ सके, है ना, और मगफरत वगैरह जो वो भी हमने कुछ ऐसे गड़बड़ कर ली हो जिसकी वजह से मगफरत भी नहीं. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, हदीस मुबारक आपने यकीनन पढ़ी होगी, कि मेरी उम्मत के सारे गुनाहगारों को माफ कर दिया जाएगा सिवाय उन गुनाहगारों के जो के खुल करके गुनाह करेंगे. ठीक है, यानी एक होता है इंसान गुनाह करे और फिर गुनाह के ऊपर उसको छुपाए कम अज कम. ठीक है, तौबा नहीं कर रहा, तौबा कर ले तो माफी हो जाता है, वो तो इसी दुनिया में ही माफ हो जाते हैं तौबा करने से. लेकिन एक दूसरी शक्ल ये है कि तौबा तो नहीं कर रहा लेकिन गुनाह के ऊपर निडर और बेबाक भी नहीं हो रहा, राइट, कि लोगों को बता रहा है, लोगों को दिखा रहा है अपने गुनाह की हरकतों को. ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो मगफरत के बारे में ना बहुत सारी चीजें बताई हैं कि किसकी मगफरत होगी, किसकी मगफरत नहीं होगी. तो जो गुनाह करके उस गुनाह का इश्तिहार करता हो ना, उसकी मगफरत नहीं होगी. तो ये जो वीडियो बना बना करके दुनिया के अंदर अपने गुनाहों की, आज फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर और ये जो वायरल की जा रही होती हैं, गुनाहों की वीडियोस, तो ये क्या है? ये निडर और बेबाकी की इंतहाई शक्ल है, एक्सट्रीम फॉर्म है ये ना, ठीक है। तो जो शख्स ऐसा कर रहा हो वो कह नहीं माफ कर दिया जाएगा भाई, अल्लाह ताला बड़े रहीम है करीम है, ठीक है। तो ये तो झूठ है खाली ना, ये रहीम करीम वाली बात तो फिर एक झूठ, और ये तो एक बेसिकली एक यानी मजाक उड़ाने वाली बात है ना, ये अल्लाह ताला की रहमत के का मजाक उड़ा रहा है इंसान इस तरीके से बात करते हैं। तो अगर हम भी अल्लाह ना करे कि हमारा भी कोई ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है कि जिसके ऊपर के यानी हम बेबाक बने हुए हैं और लोगों को बताते फिर रहे हैं, लोगों को दिखाते फिर रहे हैं, तो फिर तो नसूख और मुजरमीन इला जहन्नम विरदा के अंदर हम भी सारे ना कहीं पहुंचे हुए हो ना, प्यासी हालत में जो है वो जहन्नम की तरफ आग के ले जाया जा रहा है। मन इत्तखज़ा इंदर रहमानी अहदा, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तो ये आयत क्या थी कि ला यमलिकून शफाअता, नहीं इख्तियार रखते लोग सिफारिश का, इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमानी अहदा, यानी सिफारिश करने का इख्तियार नहीं रखते। तो हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अहद से मुराद शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह है, बाज़ ने फरमाया कि अहद से मुराद हिफ्ज़े किताबुल्लाह है। खुलासा यह है कि शफाअत करने का हक हर एक को नहीं मिलेगा बजुज उन लोगों के जो ईमान के अहद पर मजबूत रहे, यानी जिनको कामिल ईमान वाला कहते हैं। ईमान वाला तो नाकिस ईमान वाला भी ईमान वाला ही होता है, कमजोर ईमान वाला भी ईमान वाला ही होता है, लेकिन एक होता है जो कि जिसका ईमान कामिल हो जाता है। ईमान कामिल कैसे होता है कि वो गुनाहों के ऊपर इसरार करना छोड़ देता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है, ठीक है। अगर हो जाता है तो उसके ऊपर इसरार नहीं करता बल्कि अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है, ठीक है। ऐसा शख्स जो होता है ना तो उसका ईमान फिर कामिल हो जाता है, और यही फिर औलिया कहलाते हैं, यही लोग औलिया कहलाते हैं। औलिया कोई हवा में उड़ने वाले, पानी पर चलने वाले, या उंगली रख करके जो है वो बंदे को ठीक कर देने वाले, ये औलिया की डेफिनेशन नहीं है। इन और इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, है ना, कि जो ईमान लेकर के आए और तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करी, कान खोल कर सुन लो, यही अल्लाह ताला के औलिया है, ठीक है। तो क्या मुश्किल है हमारे लिए औलिया बन जाना, उसके लिए कोई आपको मजार वजार बनाने की जरूरत नहीं कि जी मैं मरूं फिर मेरे बाद मजार बने, मजार के ऊपर लोग आए तब मैं औलिया में से मैं शुमार होंगी, नहीं, औलिया बनने के लिए मजार की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, बस तौबा की जरूरत होती है, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह की वलियों में इंसान शामिल हो जाएगा, और फिर हो सकता है शफात। भाई कोई जो है वो लाखों की शफात करेगा, कोई हजारों की शफात करेगा, तो कोई दस की तो शफात कर सकता है ना, दस वाला भी तो शफात करने वाला है ना, जो हाफिज बच्चा, वो तो सुना होगा सबने कि जी जो बच्चा हिफ्स यानी जो जो हिफ्स करता है उसके वालिदैन की वो शफात करेगा, दस दस लोगों की शफात करने का उसके पास हक होगा, ठीक है। तो दस की शफात करने का भी तो हक किसी को मिलेगा ना, तो भाई हमें अगर अगर हमने गुनाहों से तौबा कर ली और बचने की कोशिश में अपनी जिंदगी गुजार दी, तो हो सकता है हम अपने साथ चार पांच को ही लेकर के चले जाएं, है ना, खुद भी चले जाएं जन्नत में और चार पांच और को भी लेकर के चले जाएं, ठीक है। तो ये भी यही तो शफात कहलाती है, और क्या शफात कहलाती है, ये थोड़ी करोड़ों की करेंगे तभी शफात कहलाएगी, नहीं, दो तीन की शफात भी शफात ही होती है। तो आगे फिर जो आयात हैं वो फिर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اتخذ الرحمن ولدا, تو کافروں کی بات چونکہ پیچھے چل رہی تھی تو کہتے ہیں یہ لوگ اتخذ الرحمن, رحمان نے بنا لیا ہے ولدا بیٹا, یعنی رحمان اولاد رکھتا ہے, اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کو اگر بندے کے لیے رکھنا ہے نا تو عبد کے بغیر نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی, اس وجہ سے کسی کا نام اگر رکھنا ہے عبد الرحمن اور پھر اس کو پکارنا بھی عبد الرحمن ہے, لکھنا بھی عبد الرحمن ہے, اس کو رحمان لکھا تو یہ گناہ ہوگا, ٹھیک ہے. رحیم ایسا نام نہیں ہے, رحیم بھی اللہ کا نام ہے, لیکن رحیم والی صفت جو ہے یہ کسی بندے میں بھی ہو سکتی ہے, یہ کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے. مطلب رمضان المبارک کا مہینہ رائٹ, وہ بھی رحیم, نبی علیہ السلام رحیم, ٹھیک ہے نا, کسی اور بندے کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ صفت ایسی ہے, لمیٹیشنز ہیں اس صفت کے اندر, ٹھیک ہے نا. رحمان ایک ایسی صفت ہے انلمیٹڈ, نو باؤنڈز, اور یہ جو انلمیٹڈ چیز ہے یہ مخلوق کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی, یہ صرف بندوں, یہ صرف خالق میں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے رزاق, رائٹ, رزاق ایک ایسا نام ہے کہ جو کہ بندے کے لیے رکھا ہی نہیں جا سکتا, اگر رکھنے کا بڑا شوق ہے تو عبد الرزاق, اور اس کو لکھنا بھی عبد الرزاق ہے, اس کو بولنا بھی عبد الرزاق ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے چند صفاتی نام ہیں, سارے اللہ تعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہیں. علماء نے کوئی باقاعدہ ایسی لسٹ مجھے کبھی بھی نہیں ملی, لیکن پھر بھی تھوڑی بہت لسٹیں جو ہے وہ علماء نے لکھی ہیں ان ایسے ناموں کی. ان شاء اللہ بلکہ یاد رہا تو کلاس کے بعد پھر اس کو بھیج بھی دیں گے. تو اتخذ الرحمن ولدا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. اچھا, کسی دو سوال آئے ہوئے ہیں یہاں پر, یہ اب تک کمنٹس ہیں تو ان کو پڑھ لیتے ہیں, کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اپنا شفاعت والے لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا ہے 70,000 لوگ وداؤٹ حساب کے جنت میں جائیں گے, یا وہ سپریٹ ہیں؟ نہیں, وہ بھی ہیں کہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن آگے کیا ہے کہ ہر ایک ان میں سے, ان 70,000 میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائے گا. تو 70,000 ملٹی پلائی بائی 70,000, ٹھیک ہے نا, یہ لوگ تو ایسے ہی جنت میں چلے گئے نا. یعنی فرسٹ 70,000 جو ہے وہ حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں, ٹھیک ہے, لیکن یہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائیں گے. تو وہ باقی جو 70,000 ہوں گے وہ ان کے جیسے نہیں ہوں گے نا, ہے نا, جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا, یعنی ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ ان 70,000 کے ساتھ میں سے کسی کے ساتھ تھا, تو وہ پھر ان کو پھر حساب کتاب کے باوجود اپنے ساتھ چلو بھی چلو. تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے. تو اب یہ ان 70,000 کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا حساب کتاب ہوگا لیکن ساتھ ان کی نیکیاں بھی اتنی ہوں گی, ٹھیک ہے, کہ وہ پھر دوسروں کو بھی لے کے جا سکتے ہوں گے. جیسے کہ ایک عام مسلمان جو کہ حفظ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ حفظ کرنے والا مسلمان ضروری نہیں ہے کہ جی بالکل یعنی ان 70,000 کے اندر شامل ہو جائے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں اور بھی, لیکن قرآن حفظ کرنا جو ہے نا وہ اس کا ایسا بڑا عمل ہے. اور یہ بھی کہ جی قرآن حفظ کرنے کا مطلب بھی اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ صرف الفاظ کو حفظ کرنا نہیں بلکہ احکامات کی حفاظت کرنا, ہے نا, یہ نہیں کہ الفاظ کو تو حفظ کر لیا اور جو ہے وہی یعنی دھڑلے کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ جو ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہے. قرآن کا حافظ بھی ہے اور قرآن کے حکموں کو ایسے جو ہے نا وہ کھلے عام جو ہے وہ توڑ بھی رہا ہے. ایسے حافظ کے بارے میں تو علماء یہ نہیں کہتے کہ اس کو بھی شفاعت کا حکم ہے, ٹھیک ہے. تو شفاعت کے لیے تھوڑا قرآن کی تھوڑی سی عزت بھی کرنی پڑتی ہے نا, خالی حفظ کر لینا نہیں, عزت بھی کرنی پڑتی ہے قرآن کی. بہرحال تو صرف ایسے 70,000 لوگ نہیں, ان کے علاوہ بھی. رحمان لفظ والوں کو لوگ مانی کہہ کر, مانی کہہ کر بلاتے ہیں, رحمان لفظ والوں کو لوگ مانی. ہاں اچھا اچھا, بس جی کیا کریں. ایسے ہمارے بھی ایک بچپن کے پڑوسی ایک بچہ تھا, اس کو بھی مانی کہتے تھے, لیکن میں نے آج تک یہ بات نہ سنی تھی اور نہ کبھی سوچی تھی کہ مانی جو ہے وہ یعنی اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا اس بچے کا, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی رحمان جس کا نام ہوتا ہے اس کو مانی بلاتے ہیں لوگ. بہرحال اللہ رحم کرے. کیا حنان اور منان ناموں کے لیے بھی
यही हुक्म है कि पहले अब्दुल लाजमी लिखना और कहना चाहिए। नहीं, हन्नान और मन्नान के साथ ऐसा नहीं, नहीं। हन्नान और हन्नाना तो सेंटर के नाम भी है, हन्नाना सेंटर या हन्नाना एकेडमी कराची में। ठीक है, अच्छा एक दो और आयतें पढ़ लेते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कि लकद जितुम शैअन इद्दा, कि बेशक, लकद का तर्जुमा बेशक से करते हैं, जितुम तुम आ गए हो, और आ गए हो किस तरह से, फंस गए हो, यानी जितुम का वैसे तो लफ्जी तर्जुमा बनेगा कि तुम आ गए हो, ठीक है, लेकिन यहां पर चूंकि हरकत जो है वो बहुत बुरी बुरी हरकत, तो इस वजह से फंस गए हो से तर्जुमा किया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तर्जुमा किया जाता है। शैअन चीज, इद्दन भारी, है ना, बड़ी यानी सख्त चीज, भारी चीज के अंदर तुम आके फंस गए हो, ये जो तुमने कहा है ना कि रहमान ने अपना बेटा बना दिया किसी, और अब इस चीज की, इस भारी चीज की तफसीर भी अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं कि क्या मतलब, तकादु समावातु यतफक्करन मिन्हु, यानी हो जाए असमावात, समावात का लफ्ज सातों आसमानों के लिए इस्तेमाल होता है, और सातों आसमान क्या हैं, कितने बड़े हैं, है ना, हमने बच्चों को जरा ड्राइंग श्राइंग बना बना करके कुछ समझाने की कोशिश करी कि सातों आसमान का मतलब क्या है, ये जमीन और ये सारी की सारी कायनात जो हमें नजर आती है ये सारी की सारी दरमियान में है, और पहला आसमान इन सब को घेरा हुआ है, हर तरफ से पहला आसमान घेरा हुआ है, ठीक है, यानी पहला आसमान हम जिधर सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, कोई इंडिया में बैठे हुए, तो पहला आसमान इंडिया के ऊपर कोई छत, ये नहीं है पहला आसमान, ठीक है, या पाकिस्तान में बैठे हो तो जी पाकिस्तान के ऊपर कोई छत बनी हुई है, ये पहला आसमान है, नहीं, ये पहला आसमान ऐसा है कि जिसने के पाकिस्तान के ऊपर भी आप चले जाएं, पूरी कायनात को क्रॉस करके आप ऊपर पहुंच जाएं उसके भी ऊपर, तो पहला आसमान है ना। अब ये पहला आसमान दुनिया के इस खित्ते के भी ऊपर, दुनिया के उस खित्ते के ऊपर भी, दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जो दुनिया का खत्ता है उसके ऊपर भी, यानी चारों तरफ से घेरा हुआ है पहला आसमान, है ना, पूरी कायनात को, और फिर दूसरा आसमान वो इस पहले आसमान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और फिर तीसरा आसमान दूसरे आसमान को चारों तरफ से 360 डिग्रीज घेरा हुआ है, तो हर आसमान कितना बड़ा होगा और हर दूसरा आसमान पहले आसमान से कितना ज्यादा बड़ा होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया के दोनों, हर दो आसमानों के दरमियान 500 साल की मुसाफत, ठीक है ना, 500 साल सफर करते रहे करते रहे करते रहे, तब जो है ना वो पहले आसमान से शुरू करी थी मुसाफत 500 साल तक करते करते, फिर उसके बाद दूसरा आसमान आएगा, तो दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में कितना बड़ा होगा, फिर तीसरा कितना बड़ा होगा, है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तकादुस्समावातु यतफक्करन मिन्हु, यानी ये जो बात करी है ना कि रहमान ने बेटा बना लिया है, सारे आसमान फट पड़े इस बात से, इतनी बड़ी बात है ये, यानी इतनी बुरी बुराई में इतनी बड़ी बात है ये। वतन शक्कुल अर्दो, और जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाए, वतखिरुल जिबालु, और पहाड़ गिर पड़े, हद्दन ढह करके, जैसे कोई बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है ना, तो जो पहाड़ है वो कोलैप्स होकर के गिर पड़े, इतनी बड़ी बात है ये किसी, यानी कह देना कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया। अंदाउ लिर्रहमान वलदन, के वो पुकारते हैं रहमान के नाम पर औलाद, यानी रहमान के लिए औलाद, इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की बात पुकारते हैं। वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, और नहीं है ये रहमान के लिए मुनासिब बात, यम्बगी का लफ्ज जो है वो, यानी रहमान को ये बात नहीं पहुंचती, यानी रहमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि अन यत्तखिज़ा, कि वो बनाए वलदन, बेटा, ठीक है, यानी औलाद, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो चाहे बेटे की शक्ल में हो, रहमान के लिए तो ये बात बिल्कुल है ही नहीं, इस तरह से मुमकिन ही नहीं है कि रहमान किसी को बेटा बना रहे।
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ بھی اپنا جو ہے نا وہ رحمان استعمال کیا اپنے لیے اس ڈسکشن کے اندر, ہے نا, پہلی آیت میں بھی رحمان اور یہاں پر بھی رحمان کا لفظ, کیونکہ رحمان ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے, سب سے زیادہ بڑی, کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دینے والے, ہر ایک تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچتی ہے. کافر بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی کھاتے ہیں نا. دنیا کے اندر جو سانس لیتا ہے, ایک ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے, اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جنت اور جہنم کا انکار کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کیسے ٹھاٹ بھاٹ سے رکھتے ہیں, ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی دیتے ہیں. تو یہ جو ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی کافروں کو بھی مل رہی ہوتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانی والی صفت کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ رحمانی والی صفت جو ہے اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت, ٹھیک ہے, اس دنیا کی حد تک. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس والے صفاتی نام کا استعمال کیا ہے اس کانسیپٹ کو بیان کرنے کے لیے کہ جی رحمان یعنی اللہ کا بیٹا کتنا, یعنی کیا چیلنج ہے یہ رحمان کے لیے. ان کلو من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا, نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی چیز, کلو من فی السماوات والارض, کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ سوائے اس کے کہ وہ رحمان کے پاس بندگی کے ساتھ آئے, رحمان کے بندے کے طور پر رحمان کے سامنے پیش ہو, یا رحمان کے مقابلے میں وہ بندہ ہو, ٹھیک ہے. کوئی چیز ہی نہیں ہے, یعنی انسان بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, جن بھی, فرشتے بھی, زمین بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے نا, یہ مخلوق بندگی کے لیے, ٹھیک ہے, آسمان بھی بندگی کے لیے ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے. یہاں پر ہم آج کلاس روکتے ہیں, اگر کسی کو مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیے, ویسے تو کلاس کا ٹائم تفصیل کلاس کا ختم ہو گیا ہے, تو اگلی کلاس پوچھا لگا سکتے ہیں. ترجمہ ہی ابھی تو ہم کر رہے ہیں, باقی تفصیل وغیرہ اور آخری آیات ہیں سورہ مریم کی. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.